आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और श्लोक के कारण प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। इस श्लोक पर विचार करके प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, ये सब बातें सामने आएंगी तो आप देखिएगा। बहुत इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रभुपाद जी को अमेरिका भेजने वाला श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धेर एकह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसाय आत्मिक अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर, श्रील प्रभुपाद जी इसको स्थिर यहाँ पे भक्ति ही ले रहे हैं और ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भाव है। व्यवसाय का अर्थ होता है बिजनेस, आत्मिका मतलब मन, तो उसका मन इसी व्यवसाय में स्थिर है। कौन से व्यवसाय में? जैसा हमने पिछली बार चर्चा किया था 2.40 में, भक्ति योग में या फिर निष्काम कर्म योग में, दो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टीका करी थी। लेकिन उसका जो बुद्धि है वह निश्चित हो गई कि इस योग पद्धति को करने में ही मुझे जीवन समर्पित करना है, सारे कर्म इस योग को अनुशीलन करने में ही लगाने हैं। बुद्धि का अर्थ आप समझते हैं, एका मतलब एकमात्र, यह मतलब इस संसार में, इस संसार में व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है इन लोगों की, वह केवल योग करने में ही अपने कर्मों को लगाते हैं, वही कर्म करते हैं जिसके द्वारा कृष्ण संतुष्ट हों। ये सिंपल सी बात, जैसे कपड़े का व्यवसायी केवल कपड़े का व्यवसाय करता है, आइसक्रीम का व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन आइसक्रीम ही बेचता है और कुछ नहीं सोचता ना और कुछ करता है, ऐसे ही जो व्यवसायत्मिक होता है उसकी इस जगत में केवल कैसी बुद्धि होती है? एकह बुद्धि होती है, मतलब इस जगत में रहते हुए भी वह केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। ये व्यवसायत्मिका का अर्थ है। कुरुनंदन का समझते हैं, गुरुओं के प्रिय। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी हैं, काम कर्मों में लगे हैं, स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति में लगे हुए हैं, उनके बहुत सारी उद्देश्य होते हैं, इसलिए उनकी जो बुद्धि होती है वह बहुशाखा होती है। इंग्लिश में कहा जाता है वन पॉइंटेड एंड मल्टी ब्रांच्ड। वन पॉइंटेड समझते हैं, एकांतिक, एक निष्ठ, और दूसरी तरह मल्टी ब्रांच मतलब बहुत सारी शाखाएं हैं, वो यहां ये भी करना है वो भी करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें को महत्व देते हैं। यह भी आप ऐसे समझ सकते हो, एक अंतिम मतलब केवल भक्ति को महत्व देना और या गुरु के आदेश को महत्व देना, जैसा कि हम सीखेंगे श्लोकों में, और बहुशाखा मतलब बहुत सारे कार्य करने, ये भी गुरु के आदेश भी पालन करने और ये भी करना है और वो भी करना है, ये भी करना है, ऐसे करके। और समझ सकते हैं कि अलग अलग शाखाओं पे अलग अलग फल हैं, तो उन फलों के पीछे भी भागना, ये दोनों में अंतर है। और बहुशाखाओं के बहुशाखा या अव्यवसायी लोगों की चर्चा 42 से लेकर 44 यानी 42, 43, 44 में चर्चा की जाएगी, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग व्यवसायी लोगों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। प्रयोजन मतलब लक्ष्य, किस लिए मैं कर रहा हूं और मेरा प्रयोजन क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है कि मुझे क्या प्राप्त करना है, और उनका लक्ष्य भी एक होता है, भगवत प्राप्ति। हे गुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। आज हम लोग दो टीकाओं की चर्चा करेंगे, गीताभूषण और सारार्थ वर्षिणी टीका। गीताभूषण में ये जो बुद्धि है इसको निष्काम कर्म योग में स्थित बुद्धि कहा गया, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, और सारार्थ वर्ष निधि का में शुद्ध भक्ता में शुद्ध भक्ति में स्थित स्थिर बुद्धि को व्यवसायत्मक बुद्धि कहा गया, और क्यों कहा गया उसको भी हम समझेंगे। कोई मतभेद नहीं है, अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से अलग अलग दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। अब पहले हम गीताभूषण टीका को चर्चा कर रहे हैं, उसकी भूमिका समझ लीजिए। इस समय बलदेव विद्याभूषण जी सनिष्ठ भक्तों की साधना का वर्णन कर रहे हैं, जो निष्काम कर्म के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्ति की प्रयास करते हैं। तो इन लोगों के दृष्टिकोण से निष्काम कर्म में इनकी एकदम स्थिरीकृत बुद्धि होती है, बुद्धि बिल्कुल फिक्स है कि मैं निष्काम कर्म करूंगा, इसके द्वारा ही मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा और उसके बाद भगवान का ज्ञान प्राप्त। इस दृष्टिकोण से ये लोग बिल्कुल फिक्स्ड हैं, और इनकी काम्य कर्मों में स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं होती, ये एकदम क्लियर है। आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सारार्थ वर्षिणी दीक्षा में वह भक्ति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, निष्काम कर्म शुद्ध भक्ति नहीं है, तो शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो निष्काम कर्म और इत्यादि को भी वह बहुशाखा कहेंगे। तो उसकी चर्चा हम जब सारार्थ वर्षिणी को भी पढ़ेंगे तो समझ लीजिए। अभी आप गीता भूषण टीका को देखिए। इस श्लोक में भगवान निष्काम कर्म और काम कर्मों में निवेशित बुद्धि के भेद को बता रहे हैं। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? वर्णाश्रम धर्म को करना और उन कर्मों को भगवान को समर्पित करना बिना किसी भौतिक इच्छा के लाभ के लिए। और इससे क्या होता है, व्यक्ति जानता है शास्त्र से सुन करके कि इससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हम सब लोग सुनते हैं आत्मा है लेकिन आत्मा का अनुभूति नहीं होती है। तो वर्णाश्रम धर्म के कर्मों को भगवान कृष्ण को समर्पित करने से क्रमशः आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, इसलिए इसको ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। और काम कर्म मतलब संतान की प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ इत्यादि करना, ये तो स्पष्ट है। हे गुरु नंदन, वेद द्वारा अनुमोदित कर्मों में जिन निष्काम कर्मों से चेतना शुद्ध हो जाती है वे कर्म भगवत आराधना का रूप ले लेते हैं, क्योंकि इसमें बुद्धि इस सत्य में दृढ़ हो जाती है कि निष्काम कर्मों में निहित ज्ञान से व्यक्ति आत्म का साक्षात्कार कर पाएगा, जैसे कमल अपनी जड़ से उत्पन्न होता है। मैं समझ रहा हूं ये लाइन समझ में नहीं आई, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, वेद में बहुत सारे कर्म है, प्रायः काम्य कर्म है, कर्मकांड है, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा भी वेद में है, उसी को तो भगवान यहां बता रहे हैं। इस निष्काम कर्म करने से व्यक्ति के हृदय में ज्ञान, आत्मज्ञान उदित होता है, और यह निष्काम कर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करने के द्वारा जब भगवान को समर्पित होता है तो यह भगवान की आराधना होती है। वर्णाश्रम आचरवतः पुरुषेण परः पुमान विष्णुर नान्य तत्वोष कारणम, क्या है बीच वाला श्लोक, कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने के द्वारा व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करता है, विष्णु पुराण के श्लोक है, और इसके अलावा वर्णाश्रम का कोई प्रयोजन नहीं है, श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन है। अतः पुंबी दुजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठतः धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। वर्णाश्रम का पालन इसलिए करना चाहिए ताकि हरि संतुष्ट हो जाए, तो एकदम स्पष्ट है, तो इसका वर्णन शास्त्र में है। अब इससे क्या होता है, जैसे कमल की जड़ से कमल का फूल निकलता है। अब आप ये बताइए कि जड़ क्या कीचड़ के बाहर होती है, ऊपर कीचड़ के अंदर, तो यानी कि कर्म अपने आप में बड़े गर्हित हैं, कर्म बंधन करते हैं, लेकिन वही कर्म जब भगवान के लिए किए जाते हैं निष्काम भावना से तो उसी से आत्मज्ञान रूपी फल या आत्मज्ञान रूपी कमल उदित होता है। समझ में आ रहा है ना लॉजिक क्या दी जा रही है। ऐसे दुनिया के कर्म करने बड़े ही बंधनकारी हैं, बड़े खराब हैं, कीचड़ से उसकी तुलना की जा रही है, लेकिन जड़ जो है भले कीचड़ में है, जड़ का मतलब सोर्स, उसका रूट, तो भले ही व्यक्ति कार्य कर रहा है वर्णाश्रम के, लेकिन क्योंकि भगवान को अर्पित कर रहा है तो आत्मज्ञान प्रकट होगा। तो ये जो निष्काम कर्म है ये भगवान की आराधना है, ऐसी निष्ठा एक सनिष्ठ की होती है कि मैं वर्णाश्रम का धर्म का पालन कर रहा हूं निष्काम भावना से, इससे भगवान की आराधना हो रही है और इससे मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, ये उसकी निष्ठा है। सनिष्ठ निष्ठा के साथ, किसमें निष्ठा है, वर्णाश्रम में, शुद्ध भक्ति में नहीं, श्रवण कीर्तन में इतना नहीं है, ये आराधना हमारी मुख्य है, ये हम वर्णाश्रम कर रहे हैं इसके द्वारा भगवान संतुष्ट हो, ये भावना। तो इस कारण से ऐसी उनकी व्यवसायत्मा का बुद्धि होती है और उसमें बुद्धि बिल्कुल स्थिर होती है। ऐसी बुद्धि का केवल एक ही लक्ष्य होता है, अर्थात वह केवल उन कार्यों को करने में स्थिर रहती है जिससे आत्मा का साक्षात्कार हो। ये तो बहुत स्पष्ट है लाइन, अर्थात कोई वेदों के वो वचन जिसमें कहा जाए कि आप ये यज्ञ करो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, जैसे इस जगत में भी आप देखते हैं कि किसी पूजा, बाबा की पूजा कर लीजिए आपकी नौकरी लग जाएगी, ऐसे बहुत सारे काम्य कर्म, आपकी कामना को पूर्ण करने वाले कर्म बताए जाते हैं, उसमें उसकी रुचि नहीं है। यह इसी कारण से उसका व्यवसाय क्या है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है निष्काम भावना से भगवान को समर्पित करते हुए, और इसके अलावा मुझे और कोई कार्य नहीं करना। समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है? ठीक। हालांकि जो लोग काम्य कर्म अर्थात अव्यवसायी नाम काम्य कर्म करते हैं उनके अनंत लक्ष्य होते हैं, क्योंकि उन व्यक्तियों को असीमित वस्तुओं जैसे पुत्र, भोजन, पशु और स्वर्ग इत्यादि की इच्छा होती है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। और इन सभी लक्ष्यों की कई शाखाएं हैं, बहुशाखा। ये तो आप, मैंने अभी आपको समझाया था कि एक पेड़ है उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो जब बहुशाखा हो जाएगा तो हर शाखा के फल को अगर आदमी चखना चाहेगा तो कभी इस शाखा पे चढ़ेगा, कभी उस शाखा पे चढ़ेगा, तो बंदर की तरह इधर से उधर से इधर ऐसे करता रहेगा। पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, ये भी चाहिए, स्वर्ग भी चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं उसमें फलीभूत होती हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं, खेत में एक बीज डालते हैं तो उससे 50 बीज निकल आते हैं। ऐसे ही जगत में हम एक कामना को पूर्ण करने के चक्कर में रहते हैं और बहुत सारी इच्छाएं निर्माण हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि एक बार एक साधु की क्या था, कोपिन को चूहा कुतर गया था, तो उसने कहा चलो बिल्ली लेके आते हैं। फिर बिल्ली के लिए बिल्ली के लिए दूध चाहिए, तो फिर गाय लेके आते हैं, तो फिर गाय के लिए चलाने के लिए, फिर गाय का सेवा करने के लिए पत्नी चाहिए, तो फिर पत्नी रखे, फिर पत्नी हो गई तो फिर बच्चे चाहिए, फिर बच्चे को पढ़ने के लिए, फिर पढ़ाने के लिए और पालन पोषण करने के लिए बहुत सारे उसने कार्य कर, नौकरी वोकरी करना पड़ा, तो वजन तो डिस्टर्ब हो गया। तो गुरु जी आए, पूछे क्या हुआ, तो कहते कोपिन फैल गई। तो ऐसे होता है कि एक बार आदमी भौतिक इच्छा के पीछे लग जाता है तो उसे आप देख सकते हैं एक के बाद एक फैल जाता है। बहुत बड़ा अज्ञान होगा अगर कोई सोचे कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर भजन शुरू करेंगे। जिस अवस्था में है वहीं से हमें भगवान की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ये स्वभाव ही है कि आप एक वस्तु इकट्ठा करेंगे फिर वो और नई वस्तुओं का निर्माण करती है इच्छा। यद्यपि सोम यज्ञ इत्यादि में केवल एक ही लक्ष्य बताया जाता है, फिर भी शास्त्र संतान और लंबे आयु जैसे अन्य बहुत से मध्यवर्ती फलों की भी चर्चा करते हैं। इसका अर्थ क्या है, कोई सोम यज्ञ कर रहा है उसके साथ साथ साइड बेनिफिट्स भी हैं, ये भी है, ये भी करना है, देखो लंबी आयु प्राप्त होगी, सुंदर अप्सरा प्राप्त होगी, ऐसे करके बहुत सारे लुभावने प्रस्ताव दिए जाते हैं, उससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आत्मज्ञान की बात ही नहीं आती। काम कर्म करने में शरीर से भिन्न आत्मा के ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि काम कर्म में लगे हुए व्यक्ति के लिए आत्मा में ऐसा विश्वास होना असंभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो व्यक्ति भोगों में लगा हुआ है उसके लिए सिद्धांतिक रूप से भी स्वीकार करना कि हम आत्मा हैं, ये बहुत मुश्किल है, असंभव है बोला जा रहा है, क्योंकि कर्म ऐसा संस्कार का निर्माण करते हैं कि व्यक्ति की चेतना और दूषित होती है। चेतना तो पहले से दूषित है और फिर उसको ऐसे और काम कर्म में लगाया जाएगा तो उसकी चेतना और दूषित हो जाती है और फिर वह समझ नहीं पाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। यही बात अभी बताई जा रही है। अव्यवसायी रहता है, वो सोचता है यहां से सुख प्राप्त कर लूंगा, वहां से सुख प्राप्त कर लूंगा, लेकिन आगे जाके इसमें एक बात होपफुल बताई जाती है, भौतिक भोगों का स्वभाव है कि वह एक तो जलन हृदय में प्रस्तुत करते हैं और कभी भी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा करते करते कई जन्मों तक व्यक्ति काम कर्म में लगा रहेगा, तब जाके कहीं उसका अधिकार प्राप्त होगा कि वह ज्ञान कांड की तरफ उत्सुक हो, ज्ञान योग की तरफ उत्सुक हो कि हाँ भाई हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मैं इससे संतुष्ट नहीं हो रहा। जब कोई व्यक्ति कर्मकांड करता है तो शास्त्रों का नियम पालन करने के कारण कई जन्मों तक इस प्रकार से इधर भटकेगा उधर भटकेगा और वह महसूस करेगा कि इन सब से मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, एक छलावे की तरह सुख मिलता है फिर चला जाता है, तब वह धीरे धीरे निर्वेद मतलब उसको डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा कि नहीं इसमें मुझे नहीं करना। लेकिन बहुत समय लगता है, कई जन्म लग जाते हैं इसमें, और फिर इसमें भी कुछ गलती हो जाए तो दुष्परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छा नहीं है। सारार्थ वर्षणी टीका। अब इसमें ये भक्ति योग को स्थापित कर रहे हैं, भक्ति योग मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण, डायरेक्ट भक्ति योग, निष्काम कर्म योग को स्थापित नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इसी को ही लेंगे, इसलिए हमने इस टीका को लिया है। ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा की गई है। अन्य सभी प्रकार की बुद्धियों की अपेक्षा वह बुद्धि उत्कृष्ट है जिसका विषय भक्ति योग है, कि मुझे भक्ति ही करनी है, इस जीवन में और कुछ नहीं करना है। यह इस प्रकार की बुद्धि अगर किसी की निर्मित हो गई तो बहुत अच्छा है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण व्यवसाय इत्यादि कह रहे हैं, व्यवसाय का मतलब इसीलिए बोल रहे हैं, व्यवसायात्मक उनकी बुद्धि है। इस भक्ति योग में व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, ये भी समझ में आ रही है। निश्चय कर लिया है कि भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना और भक्ति से सारा कुछ संपादित हो जाएगा, सब कुछ सारा परफेक्शन मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। उस बुद्धि के लक्षण को निरूपित करते हुए कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने श्री भगवान के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण परिचर्या आदि का जो उपदेश दिया है, यही मेरा साधन है, यही मेरा साध्य है एवं यही मेरा जीवन है। बहुत सुंदर लाइन है। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका क्यों गए? प्रभुपाद जी श्लोक पर विचार कर रहे थे और उन्हें कहा कि मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि अमेरिका जाओ और अमेरिका जाकर के आप, या अमेरिका या पाश्चात्य देश में जाके आप प्रचार करो। अब मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा यह मेरा, मेरे को नहीं सोचना है। गुरु का आदेश है, यह मेरा जीवन है, इसमें मैं अपना जीवन को समर्पित करूंगा। आगे और ये बात बताएंगे कि गुरु, सदगुरु, वैष्णव गुरु ने आपको, आपको बोला है कि हरि नाम करो, भक्ति करो, ऐसे करो, तो यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आप मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका, एक बुद्धि। भगवान के प्रतिनिधि ने हमें यह आज्ञा दी है, चार नियमों का पालन करें, 16 माला जप करें, एक बुद्धि ये करना है। इसमें ना लेफ्ट ना राइट ना सीधे, जैसे घोड़ा होता है ना, उसके दोनों ऐसे लगा दिए जाते हैं ब्लाइंडर्स, ना लेफ्ट देखता है, देख सके ना राइट देख सके, सीधे चलना है। पेपर और ग्लास, हाँ पता नहीं क्या उदाहरण आप बताइए माइक पे, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं, पहले इस चीज को पढ़ लीजिए फिर उदाहरण भी हम ले लेंगे आपका। तो यानी कि साधन और साध्य भी क्या है, जरा समझ लीजिए कि शुद्ध भक्ति करना, भगवान के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना, यही मेरे जीवन की सफलता है। ये भावना अगर हम अपने हृदय में लाते हैं तो इसको भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। इसके अलावा और कुछ उपलब्धि हमें जीवन में प्राप्त नहीं करना, ये भावना होनी चाहिए। साधन और साध्य दोनों ही अवस्थाओं में मैं इसे छोड़ने में असमर्थ हूं। अर्थात कोई व्यक्ति कहे कि कुछ और करिए, इससे कुछ और अधिक आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, या और कोई साधन करिए, तो कहते नहीं, यही करना है, भगवान के श्रवण कीर्तन में ही लगना है, मुझे और कुछ नहीं करना, यही मेरी कामना है और यही मेरा कार्य है। जबकि आप पहले देख सकते थे कि काम्य कर्म में कामनाएं बहुत सारी थी, इसलिए कार्य भी बहुत सारे थे। अभी कामना क्या है? कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है, प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है, गुरु ने जैसे बताया है वैसे करना है, और हमारा कोई कार्य नहीं है। बहुत सुंदर अगर ये भावना हमारे हृदय में आ जाए, बहुत अच्छा जीवन हो जाए। इसके अतिरिक्त स्वप्न में भी मेरी कोई दूसरी अभिलाषा एवं कार्य नहीं है। इससे मुझे सुख हो या दुख हो, मेरा संसार हो, नाश हो जाए अथवा नहीं, इससे मेरी कोई हानि नहीं है। कितना सुंदर है ना, हमेशा आपको जब करते समय अच्छा तो नहीं लगता, बहुत बार लोग बोलते हैं अच्छा लगता है नहीं लगता है, उससे कोई मतलब नहीं। इस समय मुझे कैसा लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, गुरु का आदेश है हमें करना है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने कहा, आई डोंट फील लाइक पेइंग ओबिसेंसिस टू यू, मेरी इच्छा नहीं हो रही आपको प्रणाम करने की। तो प्रभुपाद जी ने कहा, स्टिल यू शुड डू इट, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे फिर भी आप कीजिए। ये बात बड़ा दृढ़ होना चाहिए सर। इस प्रकार की निश्चयात्मिका बुद्धि निष्कपट शुद्ध भक्ति में ही संभव है। तो स्पष्ट है, इसमें समझाना नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ततो भजेत माम भक्त्या श्रद्धालु दृढ़ निश्चया, अर्थात उसके बाद श्रद्धालु व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होकर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये श्लोक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने चर्चा कर चुके हैं हम लोग उसकी एक बार, कि ऐसा भक्त काम्य कर्म, काम्य कर्म का समझते हैं आप, या वेदों के अन्य वाक्यों के प्रति बिल्कुल निर्वेद हो गया। निर्वेद मतलब कोई टेस्ट नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं उसमें। श्रद्धा किसमें है? भगवान की भक्ति में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भौतिक जितने हृदय के दोष हैं वे तुरंत समाप्त हो गए। काम क्रोध रहता है और उसकी वजह से भक्त प्रभावित भी हो जाए, फिर भी उसकी भावना क्या है, चाहे अपराध हो, चाहे मुझे नरक जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करना नहीं त्यागूंगा। ये मुख्य उसकी यही श्रद्धा है, दृढ़ निश्चय है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, अब चाहे मेरे हृदय में कुछ भी हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही रेलिवेंट प्रैक्टिकल श्लोक है एक भक्त के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हम भक्ति करते हैं तो हृदय तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे विचार, वासनाएं, विचार सब भरा रहता है, तो कितना भी कुछ गलत हो मैं भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। प्रभुपाद जी का एक कोटेशन पढ़ा गया था कि कितनी भी गलती हो, कृष्ण को समर्पित भक्ति में जीवन अच्छा है। कृष्ण से विमुख जीवन चाहे कितना भी अच्छा हो नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी गलती हो कृष्ण के उन्मुख जीवन भक्ति में जीवन अच्छा है। और भगवान भी इस बात को बोलते हैं, अपिचेत सु दुराचारो, ठीक है, भजते माम अनन्य भाग। तो अनन्य भाग का मतलब यह है कि मुझे परफेक्शन मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, मुझे करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भावना है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं भी बुद्धि अनन्या नहीं हो सकती, इसके लिए श्री कृष्ण बहु इत्यादि कह रहे हैं। अब थोड़ा सा टफ होगा समझने में, अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं पढ़ता जाऊंगा फिर समझाता हूं कि बहु शाखा का यहां पे वे क्या अर्थ लेते हैं। जिसकी अनेक शाखाएं होती हैं उसे बहु शाखा कहते हैं। कर्म योग में अनंत प्रकार की कामनाएं होने के कारण उसमें बुद्धि भी अनंत प्रकार की होती है। कर्म योग में अनंत प्रकार के साधन होने के कारण उसकी शाखाएं भी अनंत प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार ज्ञान योग में सर्वप्रथम अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म में बुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने के पश्चात कर्म संन्यास में बुद्धि होती है और कर्म संन्यास के बाद ज्ञान में बुद्धि होती है। अब मैं समझा रहा हूं क्या अर्थ है। कर्म योग के बाद व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी बनता है, ये तो हमने चर्चा कर लिया था। तो यानी कि ज्ञान यानी कि कर्म योग साध्य नहीं है, साधन है बाद में छोड़ना है। यानी कि आपका लक्ष्य इज लाइक अ स्मॉल डेस्टिनेशन, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है। ये शुद्ध भक्ति की बात से सोचिए, भक्ति में साधन क्या है, भक्ति, और साध्य क्या है, भक्ति। अब यहां पे साध्य चेंज हो रहा है इसलिए बहु शाखा बोल रहे, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। और जैसे साध्य चेंज हो रहा है साधना भी चेंज हो रही है। कर्म योग कर रहे थे, कर्म योग से आप ज्ञान योग पे आए, तो ज्ञान योग के लिए आत्मज्ञान के लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए, तो वह निष्काम कर्म करने लगता है। ठीक, अब वह निष्काम कर्म कर रहा है, उसके बाद जब इसका हृदय शुद्ध हो गया तो वर्णाश्रम के धर्मों कर्मों को त्याग देता है, इसे कहते हैं कर्म संन्यास। तब देख रहे हैं साधना चेंज हो रही है, बार बार साध्य चेंज होते होने की वजह से। अब जब कर्म संन्यास में आ गया, उसने वर्णाश्रम धर्म के कर्म त्याग दिए, अब वह ज्ञान में स्थित हो गया, अब वह जानता है कि ज्ञान की सिद्धि भी भक्ति के बिना नहीं हो सकती, तो वह भक्ति को जोड़ता है उसमें, तब जाकर के अंततो गत्वा शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है, तब अनन्य हो पाता है। और अनन्य भक्ति में जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, वो शुरुआत से ही उसका लक्ष्य क्या है, मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है, साधन क्या है, भक्ति। तो कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया, बिल्कुल अनन्यता है। साधन क्या है, भक्ति, साध्य है भक्ति। और यहां पे आप साधन साध्य का परिवर्तन देख पा रहे हो। समझ पाए आप लोग, थोड़ा सा टफ हो रहा है। ज्ञान की विफलता और भाव के कारण भक्ति में बुद्धि होती है, मतलब ज्ञान, केवल ज्ञान मात्र से हम लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आपने सुना है ज्ञाने प्रयास उदपस्य, ज्ञान को त्यागते हैं। और एक जगह और है स्थूल तुषावघाती नाम, जो भक्ति को त्याग देते हैं और ज्ञान का अनुशीलन करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो ये सब बात सुन करके वो फिर भक्ति करना चालू करते हैं, तो अंततो गत्वा भक्ति में आते हैं। तो भक्ति ही अनन्य है, भक्ति में आने के बाद और किसी योग पद्धति की आवश्यकता नहीं है। तो इस उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि भक्ति करने वाले लोग ही व्यवसायत्मिका हैं और बाकी अन्य योग पद्धति करने वाले अव्यवसायी हैं। ये बड़ा हाई लेवल से देख रहे हैं। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, यस। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ज्ञानम च मई सन्यसेत, अर्थात ज्ञान भी मुझे ही अर्पित करेंगे। तो ये बात यानी कि इसके बाद ज्ञान भी त्याग करके फिर वह भक्ति में आता है। श्री भगवान के उपरोक्त वचनानुसार ज्ञान के सन्यास में भी बुद्धि होती है, मतलब ज्ञान को भी त्यागना होता है, अतएव बुद्धि अनंत प्रकार की होती है। कर्म ज्ञान तथा भक्ति अवश्य अनुष्ठेय होने के कारण उनकी शाखाएं भी अनंत हैं। अर्थात पहले कर्म योग करना होता है, फिर ज्ञान योग करना होता है, फिर उसके बाद ज्ञान को भी त्याग के फिर भक्ति योग करना पड़ता है। तो भक्ति योग तक आने में बहुत सारी शाखाओं पर जंप किया है, समझ गए, एक शाखा उसके बाद ऊपर वाली शाखा, फिर उसके ऊपर शाखा, लास्ट शाखा जो है वह भक्ति है। तो योगा लैडर जिसे कहा जाता है, सीढ़ी पे करके चल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको अनंत शाखा बोला गया है, बहुत सारी शाखाएं बोली जाती है, क्रमशः विकास है। तो उम्मीद है कि आप दोनों दृष्टिकोणों से श्लोक को समझ पाए होंगे। कोई भक्त पढ़ सकते हैं हमारे नागपुर से आए हुए अद्वैताचार्य प्रभु पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका और उसके भाव को ही स्वीकार करें। यस,
यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा, व्यवसाय इत्मका बुद्धि कहलाती है।
क्या स्पष्ट हो गया? साध्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। और साधन क्या है? शुद्ध भक्ति, श्रवण, कीर्तन इत्यादि। तो ये ऐसी श्रद्धा, इसे शुद्ध भक्ति श्रद्धा कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी श्रद्धा को शुद्ध भक्ति श्रद्धा कहा जाता है। अर्थात आपका साध्य क्या है? प्रेम भक्ति। साधन क्या है? भक्ति, और कोई साधन नहीं। तो इसको शुद्ध भक्ति श्रद्धा कहा जाता है। और यह है किसी के भी हृदय में स्थापित, आरोपित की जा सकती है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी निम्न क्यों ना हो, कितना रजोगुण तमोगुण उसे मतलब नहीं है। भक्त संघ से यह निर्गुणा भक्ति करके आरोपित की जा सकती। ये बड़ा सुंदर सिद्धांत है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतने बड़े निकृष्ट व्यक्तियों को भी इतना महान भक्त बना दिया, क्योंकि ये भक्ति किसी भी योग्यता के लिए ऊपर निर्भर नहीं करती। जैसे आपने देखा था कि काम कर्म करने वाले निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते, योग्यता चाहिए। निष्काम कर्म ज्ञान योग के मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं, फिर योग्यता प्राप्त करते हैं। फिर वह ज्ञान वाले सोचते नहीं, अभी मुझे और प्रगति करने के लिए भक्ति पे आना पड़ेगा, भक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। तो यहां पे योग्यता की आवश्यकता है, लेकिन जो निर्गुणा भक्ति है, इस शुद्ध भक्ति श्रद्धा है, ये कोई योग्यता की अपेक्षा नहीं करती। भक्त संघ से, शुद्ध भक्त के संघ से सीधे आरोपित हो जाती है। साधन है भक्ति, लक्ष्य है भक्ति। स्पष्ट? यस।
चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत्य है।
हाँ, अब देखिए इसका अर्थ लोग क्या सोचते हैं कि हम हरे कृष्ण जप रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं मतलब नहाने की जरूरत है आपको, इजंट इट? वैष्णव की सेवा करने की जरूरत है, ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ यह है कि जो आप साध्य प्राप्त करना चाहते हो, प्रेम भक्ति, उसके लिए साधन भगवान की भक्ति है, उसको उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप माता पिता की सेवा नहीं कर करेंगे या और किसी का सम्मान नहीं करेंगे, और कुछ कार्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा जाता। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं साधना भक्ति कर रहा हूं, साधन भक्ति, मेरा साधन जो है वो भक्ति है, और वो भक्ति कर रहा हूं तो अब मुझे, हाँ, मुझे और कोई श्राद्ध और कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सत्य है, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात तो सत्य है। लेकिन और जो भी आपके कर्तव्य हैं उस जगत में, उसको भी हमें करना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा, ये परनिष्ठों के संबंध में भी बात आएगी। आप भक्ति कर रहे हैं, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामाजिक दायित्व है उसको पूरा नहीं करें, लेकिन ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि सामाजिक दायित्वों से फिर हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। दोनों ही चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए। प्रेम भक्ति तभी प्राप्त होगी जब भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान का डायरेक्ट भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति। यस।
श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है श्रील, भगवान को हम देखे नहीं है लेकिन शास्त्र की बात सुन करके भगवान में विश्वास है कि भगवान का भजन करेंगे, इसे कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। यस।
जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता में बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती।
आपको लगेगा प्रभु जी अभी तो विरोधाभास लग रहा है, अभी आपने बोला था माता पिता की सेवा नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद कहते ऐसे कर रहे हैं। यस, अगर उनकी सेवा से भक्ति के विरुद्ध आचरण करना पड़े तब, मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे आप प्रहलाद महाराज को देखेंगे, प्रहलाद महाराज के शुद्ध भक्त नहीं थे लेकिन हिरण्यकश्यप को प्रणाम करते थे कि नहीं करते? अर्जुन के शुद्ध भक्त नहीं है, अर्जुन शुद्ध भक्त हैं लेकिन फिर भी अपने सामाजिक कर्तव्यों को करते थे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि हम अगर हम इस प्रकार से ना कर सकते। लेकिन अगर वह कर्तव्य हमारी भक्ति में बाधा पड़ रहा है तो फिर उसको त्याग देना उचित। यस, मैं इसको समझा देता हूं, मेरे ख्याल से लोग कन्विंस नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम में कर्म अनावृत्ति का अर्थ क्या होता है समझिए। कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं श्राद्ध कर्म करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, ये भक्ति पे आवृत्ति है, भक्ति को ढक जाना। कोई कहे कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, यह भी भक्ति में को ढकना है। लेकिन अगर वह श्राद्ध इसलिए कर रहा है क्योंकि झगड़ा नहीं हो घर में, तो यह भक्ति में आवृत्ति नहीं। आवृत्ति मतलब समझ रहे, आवृत्ति मतलब ढकना, वो उसको श्रद्धा नहीं है कि इससे भक्ति बढ़ेगी, लेकिन समाज में झगड़ा नहीं हो तो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सूक्ष्म भेद है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्राद्ध करूंगा तो भक्ति बढ़ेगी, ये ढक गई भक्ति आपकी, भक्ति में श्रद्धा कम हो गई। श्राद्ध नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, तो भक्ति ढक गई। लेकिन श्राद्ध कर रहा है बिना श्रद्धा के, ठीक है भाई, जब हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो ऐसे ही पितरों का उद्धार हो रहा है। फिर भी क्योंकि बाहर के लोग नहीं मान समझते हैं, इसलिए वो करता है। जैसा कि अभी हम लोग परिनिष्ठों के बारे में वर्णन करेंगे, वह साधन लेते हैं भक्ति, लेकिन वर्णाश्रम का पालन केवल इसलिए करते हैं ताकि समाज में वर्णाश्रम की स्थापना रहे। बस वर्णाश्रम का अर्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इस प्रकार से इनको पालन करना। ये बहुत लंबा विषय है लेकिन इसको वर्णाश्रम कहते हैं। चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चार आश्रम है, ब्रह्मचारी वान गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ऐसे करके। यस,
पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्म में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना में है,
जब हम इस जगत में सकाम कर्म करते हैं तो उनका संस्कार बनता है, वह संस्कार व्यक्ति को अगले जन्म में फिर से वैसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से बहुत गंभीर बात यह है कि जब तक हमें भक्ति का संस्कार प्राप्त नहीं होगा, हम भक्ति करेंगे ही नहीं। इसलिए अगर कोई भक्ति का संस्कार भी प्राप्त कर लेता है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। समझ आ रहा है? और भक्ति का संस्कार सबसे अधिक मुश्किल है। बहुत सिंपल है, जैसे किसी जमीन में कोई एक विशिष्ट बीज ना डाला जाए तो पेड़ कभी उगेगा नहीं, उगेगा, सिंपल सी बात। तो भक्ति का बीज अगर ना डाला जाए तो वह कभी भी नहीं उगता। इसीलिए भक्तों का संग बहुत रेयर है। एक नया भक्त भी भक्ति का बीज दूसरों को दे सकता है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत से ही उसकी श्रद्धा है कि साधन क्या है, भक्ति, और साध्य भक्ति, वही दूसरों को समझाना है, सिंपल। यस,
जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे या बुरे का द्वैत नहीं रह जाता।
ये सब समझ रहे हैं आप? बहुत स्पष्ट है कि वो कार्य जो गुरु ने बताए हैं कृष्ण के सेवा के संबंध में, बस वही अच्छे कार्य हैं, वही करना है, और बाकी सारे कार्य बुरे हैं। बाकी समझ गए ना? जैसे इस जगत में एक अच्छा लड़का होना या अच्छा पति होना, ये बहुत सारे अच्छे कार्य हैं, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन अगर भक्ति के विरोधी हैं तो फिर इस अच्छाई के प्रति व्यक्ति को आसक्त नहीं होना चाहिए, तथाकथित अच्छाई के प्रति, ठीक है। यस,
कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, शायद कल नहीं, जब भी लास्ट टाइम क्लास हुई थी, कि जब हम भोग के कार्यों में लगे रहते हैं तो हम शरीर के स्तर पर कार्य करें, आहार निद्रा भय मैथुन में लगा हुआ व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है जिससे इसकी शारीरिक चेतना बढ़ जाएगी। जब हम भगवान के विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, फिलॉसफी की चर्चा करते हैं, हरि नाम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, दो भी शुद्ध भक्ति के नवदा भक्ति के अंगों का अनुशीलन करते हैं, तो हम आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं, भले ही शरीर में। तो अब जब हम आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं तो क्रमशः करते 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 आत्मा का स्वरूप स्पष्ट प्रकट हो जाएगा। भाई जैसे आप देखते हो हीटर में एक जो कॉइल होता है, जब करंट के संपर्क में रहता है, करते 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 शुरुआत में थोड़ा लाल होता है, फिर और लाल होता है, फिर और लाल होता है, बिल्कुल बाद में एकदम अग्नि की तरह हो जाता है, तो देख रहे हैं ना? उसी प्रकार से अगर हम लोग लगातार केवल आत्मा की क्रियाओं में लगे रहे तो आत्मा का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे आप भी देखते हो कि लकड़ी को, ऐसे माचिस का एग्जांपल ले लीजिए, माचिस में अग्नि होती है तो माचिस को थोड़ा घिसते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है, उसके बाद वह माचिस या लकड़ी नहीं रहती, वह अग्नि हो जाती है। तो आत्मा का जो स्वरूप है, अगर आत्मा को आत्मा के कार्यों में लगाया जाएगा तो आत्मा का स्वरूप स्पष्ट प्रकट हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद बोले क्रमशः अवस्था स्वतः प्रकट हो जाती है। यस, स्वतः प्राप्त हो जाती है, मतलब भगवान की भक्ति को साधन के रूप में किया जाए तो आत्म साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बोली जा रही है, स्वतः करते ही होता है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है।
एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम दृढ़ता से भक्ति करना चाहते हैं तो हमें भक्ति के शास्त्रों का ज्ञान और उन पर विश्वास बहुत जरूरी है। हमारी श्रद्धा जो है वो शास्त्रीय होनी चाहिए। शास्त्र नहीं सुनेंगे तो हम दो दिन दिन के भक्त हो सक रह पाएंगे, लेकिन अगर आप शास्त्र सुनेंगे तो जीवन भर भक्त रह पाएंगे। प्रभुपाद जी का अच्छा वक्तव्य है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। समझ में आया? मेरी पुस्तकों का वितरण करके मेरे भक्त बड़े प्रसन्न होंगे, और अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो वो रहेंगे, और अगर हम प्रभुपाद जी की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो इस कौन में रहते हुए भी हम इस कौन में नहीं रहेंगे। समझ में आया? कुछ और ही भावना, कुछ और ही मूड बन जाएगा। प्रभुपाद जी का मुख्य मूड है प्रचार का, दूसरों पर दया दिखाने का। तो अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो फिर किसी और ही धारणा से, किसी और तरीके से हम भगवान को प्रसन्न करने के पथ पे चल पड़ेंगे, भले ही इस कौन में हम शरीर शारीरिक रूप से रहें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे कभी कभी हम सुनते हैं वृंदावन छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, सही बात है। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि कुछ भक्तों का व्रत है कि वृंदावन नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि अगर वो भक्त जिसने हमको भक्ति में लाया था वो ये प्रण लेता तो हम कहाँ होते, हम कौन से वन में होते, ये सोच लेना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ भक्त लोग ऐसा व्रत ले लेते हैं कि हमें वृंदावन नहीं त्यागना चाहिए और अच्छा व्रत है, लेकिन अगर कोई वृंदावन की महिमा को प्रचार करने के लिए बाहर जाते हैं तो वह वृंदावन से डिस्कनेक्टेड नहीं है। डिस्कनेक्टेड मतलब अलग नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, है ना? एक बार प्रभुपाद जी से घटना अच्छी है, प्रभुपाद जी को कुछ वीजा का इश्यू हो रहा था तो किसी ने बोला ये अमेरिकन महिला है, इनसे आप शादी कर लीजिए। वो कहते हैं नो, ऐसा नहीं, अभी इतना नहीं, मैं सन्यासी हो चुका हूं, अभी नहीं। ऐसा लोगों ने प्रस्ताव प्रभुपाद जी को दिया। तो प्रभुपाद जी वहां अमेरिका के सिटीजन बनने के लिए इसलिए नहीं गए थे कि अब आराम से जिंदगी काटेंगे, उनको बहुत खराब लग रहा था वृंदावन से दूर रहने के लिए, लेकिन भगवान की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, गुरु की आज्ञा को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे थे। ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं?
कोई कहेगा कि प्रभुपाद जी को तो उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दिया कि प्रचार के लिए पाश्चात्य देश में जाओ, तो कोई कहेगा कि हमें तो आज्ञा नहीं दिया गुरु महाराज ने अभी।
श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के सभी भक्तों के शिक्षा गुरु हैं, प्रमुख शिक्षा गुरु। बहुत बड़ी भ्रांति होगी कि हमारे गुरु महाराज से हमें सीधे शिक्षा प्राप्त होगी या हमारे गुरु महाराज से हमें सीधे आज्ञा प्राप्त होगी तभी हम कुछ करेंगे। बहुत बड़ा ज्ञान होगा। सीधा प्रभुपाद जी इस्कॉन के सभी भक्तों के शिक्षा गुरु हैं। और कौन सी किताब में प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं प्रचार करने के, कौन से प्रैक्टिकली कौन से परपट में नहीं बोल रहे? तो इसलिए जब दधीची ऋषि को पूछा गया था अपनी हड्डियां दे दो, तो बोले मैं गुरु महाराज से पूछ के आता हूं। तो ये स्वयं आलस, अपने आलस को छुपाने के लिए व्यक्ति करता है। जब प्लेट में पास्ता आता है तब तो गुरु महाराज से नहीं पूछते गुरु महाराज ने बोला है पास्ता खाने के लिए कि नहीं, तब तो कोई नहीं बोलेगा, है ना? तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमारे गुरु महाराज जी बोलेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे आज तक अपने गुरु महाराज से कोई बात ही नहीं हुई, खाली एक ही प्रश्न पूछा है, ध्यानपूर्वक जप क्यों करना चाहिए, तो बाकी सारे कार्य कैसे करना है? तो इसलिए आवश्यक है कि, और बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी से कभी नहीं मिले, तो प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। तो ये केवल जिसको नहीं करना है वो ऐसे बहाने बना देगा। ठीक है,
वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ सिंचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होता है।
श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सभी के उद्भव हैं, सबके स्रोत हैं, इसलिए अगर मैं कृष्ण को संतुष्ट करूंगा तो सभी लोग संतुष्ट होंगे। बहुत सटल सूक्ष्म पॉइंट्स हैं। जब हम कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन देवी देवताओं का यदि अपमान किया तो व्यक्ति वैष्णव ही नहीं है। मैं कोटेशन दिखाऊंगा, कल ही पढ़ रहा था। देवी देवताओं का एक मैनेजर स्वरूप है और दूसरा इनका एक वैष्णव स्वरूप है। जैसे शिव जी मैनेजर हैं तमोगुण के, लेकिन महान वैष्णव है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी अपने तात्पर्य में बताते हैं बहुत बहुत अच्छा कि क्यों ऐसे महाप्रभु बोलते हैं कि मेरी पूजा करने वाला व्यक्ति अगर तुम्हारे अवमानना करता है तो मेरा कभी मैं वो भक्ति प्राप्त भी किया होगा तो भी गिर जाएगा। अर्थात अगर कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है और गुरु की अवज्ञा कर रहा है, गुरु को नहीं मानता, तो वो भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु पूजा करना बहुत जरूरी है। गुरु पूजा ना करने वाला व्यक्ति, प्रभुपाद बोले, ही इज ड्रिंकिंग द पॉइजन ऑफ पूतना, पूतना ब्रेस्ट, पूतना के स्तनों में रखे हुए जहर को पी रहा है, क्योंकि वह कृष्ण को सीधे प्राप्त करना चाहता है। अभी दही चीड़ा फेस्टिवल आ ही रहा है, आप जानते हो कि रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट महाप्रभु की शरण प्राप्त करना चाहते थे, नहीं हो पाया। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई तो तुरंत हो गए। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम चोर हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। उसी प्रकार से अद्वैताचार्य की कोई अपमान ना करता है, अर्थात शिवजी का कोई अपमान करता है, अरे ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो वह कृष्ण को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु वैष्णव सभी को हम सम्मान दें, ये बहुत जरूरी है, तब हम कृष्ण के सच्चे भक्त बन सकते हैं। अपितु सारे जीवात्माओं का सम्मान करें, तब हम सच्चे भक्त बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम अगर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, सबको संतुष्ट तो करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सबको असम्मान करें। असम्मान करना तो मतलब बहुत ही गड़बड़ बात, बहुत खराब बात है। भगवान बोलते हैं केवल दम्भिक है वो, ऐसा व्यक्ति वो केवल दम्भी है, वह वैष्णव भी नहीं। आपको मैं श्लोक दिखा सकता हूं इस बारे में, प्रभु जी कोट कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ जब मैंने श्लोक देखा। हमने कहा तो स्पष्ट है, दम्भिक मतलब केवल दिखावा कर रहा है, मान रहा है कि मैं भक्त हूं। तो हमको सोचना चाहिए कि इस गुण को हमें कल्टीवेट करना है, सबको सम्मान देने की भावना। हाँ, एक और बात प्रभुपाद जी एक जगह टीका में कहते हैं कि पेड़ में जल देते हैं तो सबको पानी, पत्तियों को पानी मिलता है, उन्हीं पत्तियों को जो पेड़ से कनेक्टेड हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है जैसे हिरण्यकश्यप, वो संतुष्ट नहीं होते भक्त, वो गुस्सा करते हैं। लेकिन जो अन्य देवी देवता है, बाकी सब लोग हैं, बस आशीर्वाद देते, खुश होते। जैसे शिव जी, कोई व्यक्ति बोलता है रा, तो शिव जी कहते हैं मैं सोचता हूं क्या मां भी बोलेगा, मतलब राम बोल देगा क्या, इतने वो उत्सुक रहते। ठीक है, यस।
किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है।
एकदम स्पष्ट हो गया ना कि भाई मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं तो मुझे गुरु जी के पास जाने की क्या जरूरत है, गुरु के माध्यम से ही हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। यस,
क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा।
ये तो आपने देखा ही था ना, गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी है वैष्णव गुरु होना चाहिए। तो बस अब उसे सफलता मिले या ना मिले उसकी टेंशन नहीं लेना, करना है। यस,
उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् नगति कुतोपि। ध्यायन सुवंतस्य यतस्य संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु
तो स्पष्ट है
किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती।
समझ में नहीं आ रही होगी ना। देखिए केवल सिद्धांत मात्र नहीं है। जब व्यक्ति भक्ति करता है जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया है गुरु का आश्रय लेकर के, तो अपने आप सारा कुछ ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है। यही बात बोल रहे हैं, उसका आत्मज्ञान का अनुभव होता है। जैसा हम लोग सुनते हैं ना, क्या दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तो कैसे होता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं तो भगवान हृदय में बैठे हैं, वे प्रसन्न होते हैं और हमारे हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं। ये बात
जब कोई
जब कोई व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है, मतलब इस जगत में कुछ महान बनना चाहता है, तो वह इस प्रकार के दृढ़ निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकता है, वह अव्यवसायी रहेगा। यस,
जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है।
जब जिसने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपने गुरु की आज्ञा के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ, तो वह फिर इन काम कर्मों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। और जिसका मन इस प्रकार से दृढ़ नहीं है, उसके लिए असंभव है इस प्रकार से आत्मज्ञान के पथ पे स्थिर रहना। तो हमने ये सीखा कि जो व्यक्ति इसको बंद कर दीजिए, हाँ ठीक है, तो हमने ये सीखा है कि आज व्यवसाय का अर्थ है उसका एक ही बिजनेस है। हम भक्तियों की व्याख्या ले रहे हैं कि भगवान वैष्णव गुरु का स्वीकार करके, गुरु मतलब वैष्णव ही होना चाहिए, उसके बताए गए आदेशों को आदमी पालन करे। श्री प्रभुपाद ने हम सबको बताया 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, दूसरों का आदर मत करो, ये भी बताया नहीं, दूसरों का आदर करो, भक्ति के सारे विभिन्न नियमों का पालन करें और उसको दृढ़ता से करें और इस विश्वास के संग करें कि इसी से मुझे परम सिद्धि प्राप्त होगी। कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।